अमेरिका में बहुत से जगहों में, यूरोप में बहुत से गाँव में प्रचार कर तो हम लोग बर्लिन जर्मनी की राजधानी बर्लिन से होते हुए जा रहे हैं। स्पेशल बस या तो शुरुआत होगा राधा कृष्ण के चरणों में पकड़ी और माता के घर से ले जाना, माता के घर में आना पड़े आना पड़े, लेकिन राधा कृष्ण की वो प्रेम नहीं गोपियों की भक्ति हो
गई।
सबको आशीर्वाद देता
दिनों से ये गुरु पूर्णिमा आ रही है। व्यास जी के जन्म के दिन से इसलिए एक तरह से ये व्यास पूजा कहलाती है। ये पूर्णिमा विशेष कर व्यास जी का ये जन्म तिथि के अवसर पर ये व्यास पूजा हुआ कर उसी दिन ब्रज में हमारे सनातन गोस्वामी जी उनका तीर्थ भाव हुआ। तो उस समय में उनके लिए ये गुरु पूर्णिमा रखी गई। सनातन गोस्वामी जी का तीर्थ भाव उसका उसी दिन ये होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा से ये जुड़ गया उनकी गुरु ये दिव्य। By this book, they preached Krishna, especially Gopis and Radhika, especially Gopis and Radhika, that's it where, so he's done there, सातवां दिन यानी आइलैंड ऑफ यमुना दुर्वासा ऋषि आश्रम एंड मथुरा का जन्म कहाँ हुआ तो किसलिए कराते हैं वेद अभ्यास वेदों का अभ्यास विस्तार करने वाले और कृष्ण लीलाओं को कृष्ण को चारों तरफ में प्रकट करने के लिए इनका जन्म हुआ। ये भगवान के अवतार हैं, ये मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण। और एक समय पराशर ऋषि जमुना पार में रहते थे, वे किसी काम से मथुरा आए। शाम हो गई, सेवा के घाट बंद हो गए और उनको लौटना जरूरी था। जमुना में पानी भरा हुआ था, उन्होंने मधुरा को पुकारा। मल्लाह को पुकारा ऊंट पार में, मल्लाह का गांव अभी भी है वहां
मत्स्यपुरा।
तो वहां पर मल्लाह उपाय जैसे मैं थक गया हूँ सारा दिन व्यतीत हो गया। उसको एक बेटी थी, वो अस्परा की बेटी थी। इस मल्लाह ने पाला होता था, उसका नाम मत्स्य गंधा था। अब वो 15-16 वर्ष की 18 वर्ष की हो चुकी थी, बड़ी सुंदरी अस्परा की लड़की। गड़ी जाओ उसको पार कराओ। वो ऋषि बुला रहे हैं, उसको जाना जरूरी है, मैं कल्याण में नहीं जा सकता, तुम जाओ। तो बेटी नौका लेकर के उस पार से इस पार आई और ऋषि को बैठाया। और बैठा करके जब पार कराने लग गई, उस समय में यमुना में एक टापू पड़ा था जिस पर पेड़ पौधे इत्यादि थे। उधर भी यमुना का एक धार, इधर से भी यमुना का धार, ठीक विश्राम घाट के पास ही में उधर वही जब लेकर के जीतने पहुंची तो ऋषि ने उसके तरफ में देखा और देखते ही उसको बच्चा पैदा हो गया। बहुत सुंदर पराशर जी लंबे चौड़े श्याम रंग के थे, बहुत बिंदाल बहुत उनका ऊंचा था और तपस्वी तो थे ही। वो भक्ति ग्रंथ के रचयिता हैं, हमारे आचार्यों में से एक है
पराशर संहिता।
पराशर संहिता तो उनके देखते ही वो बच्चा पैदा हो गया। तुम क्वारी की क्वारी ही रही और अब से तुम्हारे शरीर से मछली का गंदा रहा था, क्योंकि उससे पैदा हुई। अब से तुम पर्याप्त गंध जैसे तुम्हारे शरीर से सुगंध निकलेगा और ये बेटा होने पर भी तुम्हारे रहेगी तो। और तुम्हारी शादी बहुत प्रकार की नरेश हैं शांतनु के साथ में काल कर में होगी। इस तरह से तुम विश्वविख्यात बन जाएगी। और ये कर कर ऋषि तो चले गए और वेद व्यास जी वो भी मालूम 16-17 वर्ष के लड़के जैसे। माता जी को प्रणाम किया उन्होंने, माता जी मैं तो जा रहा हूँ भजन करूंगा कहीं, अब आप अपने पिताजी के घर में जाइए, जब कभी कोई जरूरत होगी मुझे बुला ले, मैं सब समय तुम्हारे पास ही रहूँ। किंतु बहुत से काम ये करते हैं कि जब भी को करके घर में जाओ कोई कुछ नहीं कहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब जरूरत होगी तुम हमको स्मरण करने मात्र से मैं तुम्हारे पास रहूँ। पीछे से संतन महाराज जी एक दिन उसको देखा, उसने मल्लाह को कहा जैसे ये बेटी तुम दे दो हमको, बेटे को हमारे अपने बाद में राज्य अधिकारी तब तो शपथ होगा। उन्होंने कहा कि संतु जी ने कहा कि हमारा बेटा तो भीष्म है, बहुत बलवान है, ब्रह्मचर्य पितृ भक्त है, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा। बहुत दुखी होकर के चले गए और बड़े दुखी के घर में उनके पसंद मिलने वाले कोई या मंत्री हो या किसी से ने पूछा तो उन्होंने ये फिर बदला दिया कि उसकी लड़की देख करके मैं मोहित हो गया और उसके साथ में शादी करना चाहता था कि वो शादी नहीं कर। वो कहता है कि हमारी बेटी का लड़का भी राजी कर देता है, ऐसा मैं नहीं कर। बड़े दुखी थे। विषम पितामह जी ने देखा कि पिताजी क्यों दुखी हैं, तो पिताजी से ना पूछ करके उस व्यक्ति से पूछा क्यों ये दुखी है। उन्होंने पूछा तो उनको बताया नहीं शांत होने। जब उनको पता लग गया कि उस लड़की से विवाह करना चाहते हैं किंतु राज्य अधिकारी मम्मी को बनाना चाहते हैं, तो मल्ला के पास में गए और उसे कहा मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम अपनी बेटी को हमारे पिताजी के लिए दो, शादी कर दो, और तुम उत्तराधिकारी के लिए कर दो, तो मैं प्रतिज्ञा आज से करता हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगा, बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, अखंड ब्रह्मचारी, कभी भी राज्य का अधिकारी नहीं हूँ, नहीं हूँगा, ये प्रतिज्ञा करता हूँ, अब तुम दे सकते हो। उन्होंने दिया, ले गया पिताजी की शादी करा। फिर उसके तीन बच्चे हुए, विचित्र विचित्र प्राणगत और उसके बाद में महाभारत बहुत बड़ा था। महाभारत हमको इतना ही जरूरत था। हाँ ये बताओ क्या की वृंदावन में ही प्रकार के भागवत की रचना है। वृंदावन की बात कृष्ण गंगा था, एक कृष्ण माने कृष्ण द्वारिकाएं पेद कर्णकर के पास बिना वृंदावन में रहे ब्रजिकादशी हुए बिना श्रीमद भागवत कौन ऐसा लिख सकता है। जब वृंदावन की जरूर छाया होगी, लिखा है कि सामने प्रास में बद्रिकाश्रम में नारद जी से भेंट हुई, हो सकता है कुछ समय में वो वहां हो, क्योंकि ऋषियों के तो बहुत आश्रम हुआ करते वाल्मीकि आश्रम 50 में, चित्रकूट के पास में है, प्रयाग में है और सब जगहों में है। वैसे ही व्यास जी ये दुर्गाता जी का भी द्वारका में है, जाना है अतिरिक्त ऋषि के आश्रम में है, बहुत जगह में चित्रकूट
आश्रम बन जाता है,
माने कि वहाँ पर 10 वर्ष बाद उम्र है करोड़ों वर्ष की, कहीं भी 20 वर्ष पास किया तो उनका एक वैसे व्यासदेव जी का भी तो वो उन्होंने वेदों का भी भाग किया चार, पहले एक अथर्व वेद था, चार विभाग किए, किस तरह से विभाग किए, एक एक विषय लेकर यज्ञ का जितना विचार है उसके लिए किए, ऋग्वेद माने यज्ञ के समय में जो देवताओं की और भगवान की जो स्तव स्तुति होती है संगीत में वो एक उसमें वाला होता इत्यादि ये सभी भाग होते हैं, तो उसके विषय में वो जो वर्णन किया गया है एक एक व्यक्ति को उन्होंने पहले तो विभाग किया उसके अनुसार में देखा और उसी का एक भाग है उपनिषद, उसके साथ जो है अंतिम भाग ये सब उन्होंने किए और अपने प्रिय शिष्यों को इसका अध्ययन कराया, किसी को यजुर्वेद, किसी को अथर्ववेद, किसी को ऋग्वेद, किसी को सामवेद, उसमें पाई सुमन सा वैशंपायन और जय। साथियों को भगवान की कथाएं सुना सकते। जीवन महाभारत जो सर्व सीधे स्त्री लोगों के लिए और वर्णों से भिन्न व्यक्तियों के लिए जो सभी इसको पढ़ सकते हैं, वे वही पढ़ेंगे जो ब्राह्मण यद्यपि किसका हुआ वो कर सकते हैं, जो इन चीजों को समझ सकते हैं। स्त्रियां मत सब जो सभी स्त्रियां उसमें गादी इत्यादि है वो सब वेदों को पढ़ी पढ़ने वाली और सब प्रधान स्त्रियां जो उतना नहीं समझती हैं, जिनका हृदय भावुक होता है, जो अपवित्र रहती हैं सब समय, बच्चे होना गर्भवती होना रजस्वला होना इत्यादि सब कारणों से उनको वेद का पढ़ने का अधिकार नहीं मिलेगा, किंतु उसे भी अभी ऊंचा अधिकार दिया गया है। तो उन्होंने ये सबको पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में महाभारत की रचना की और इसको उसी महाभारत में गीता भी आ गया और करने के बाद में उन्होंने गायत्री का भाष्य और स्वयं ब्रह्म सूत्राणाम गायत्री भाष्य रूपों और सब वेद वेदों का विस्तार करने के लिए चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत की रचना की, जो कि ब्रह्मा से नारदी नारदी से व्यासी संक्षेप में भाग। इतना करने के बाद भी अपने आश्रम में पत्रिकाश्रम के आश्रम में बड़े खेल के साथ में बैठे हुए थे, दुखी थे, उसे अतृप्त थे, आत्मा ज्ञात्मा संप्रसिद्ध थी जो नहीं जैसे कि आत्मा कुछ खिन्न होकर के बैठे थे, चिंता कर रहे थे, ये क्यों मेरा चित्त खिन्न है, मैं क्यों दुखी, इतना मैंने सब कुछ किया सब कुछ जानता हूँ और प्रसन्न कभी चित्त तो बहुत बड़ा खिन्न है, क्यों कुछ विचार उनके समझ में नहीं आया। और उसी समय में नारद जी वीणा बजाते हुए मुझे यहाँ पर पहुंचे हैं। नारद जी को व्यास जी भगवान के अवतार होते हुए भी अपने गुरु जी को व्यास जी को नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी को बैठाया, उनके चरण पखारे और जो होना चाहिए वो सब कुछ करने के बाद में नारद जी ने देखा इसका मन बड़ा उदास है, समझे तुम उदास क्यों हो, तो प्रसन्न क्यों नहीं, जगत में जो कुछ करना चाहिए था तो वो तो आपने कर दिया और जगत के गुरु बने हुए हो दूसरों को शिक्षा देने वाले, इसे सब लोगों की आत्मा प्रसन्न हो और तुम्हारी आत्मा ही प्रसन्न नहीं है, वेदों का विभाग कर दिया है, मतलब क्या वेदों का तात्पर्य आपने समझ लिया, वेदों का तात्पर्य सब क्या है, उपनिषदों की भी रचना आपने की, आपने समस्त पुराणों को भी आपने पढ़ा है, आपने यहाँ तक ना पढ़ा तो उसमें गीता शांति पर्व इत्यादि ये सब का निर्माण किया है, क्यों है और सबका मिला करके ब्रह्म सूत्र की भी रचना आपने की है, फिर आप दुखी हैं, अरे गुरु जी यही तो पता नहीं, देखियो मैं दुखी हूँ, जैसे रोगी अपना रोग निर्णय नहीं कर सकता, कोई वैद्य हो कोई अच्छा डॉक्टर हो तो वो रोग का निर्णय कर लेगा, इसलिए अपना मैं रोग निर्णय नहीं कर सकता, आप बतलाइए, तुमने अर्थ धर्म काम और मोक्ष इन चारों के विषयों में ही वेद में और अपने पुस्तकों में पुराणों इत्यादि में यहाँ तक कि ब्रह्म सूत्र में भी इन्हीं का वर्णन किया, धर्म बड़ा संधर्म कैसा कैसे होता है, अर्थ की उत्पत्ति कैसे होती है, अर्थ कैसे लाया जाता है, धन संग्रह कैसे होता है, अर्थ धर्म काम उसे कामनाएं कैसे पूर्ण होती है संसार की ये भी तुमने लिखा और उससे मुक्ति भी कैसे पाई जा सकती है, यहाँ तक तो लिखा इसके बाद का तुमने कुछ नहीं लिखा, ये बात ना तो प्रसन्नता कैसे होती है, कृष्ण का लीला चरित्र लीला कथन आपने नहीं लिखा, क्या आपने ये लिखा कि वो परब्रह्म सत्ता विरक्त का सृजन करने वाला संहार करने वाला ईश्वरों का भी ईश्वर किसी का बेटा है, लिखा क्या आपने लिखा कि झूठे जो बार बार भैया कराने वाले हैं उनका झूठा खाता है वो पर बनूंगा। उसकी भैया उसको बांध देती है और रोता दिल गिराता है, दिल गिराता है उनके गोदी में चढ़ने के लिए, दर्शन पान करने के लिए, और फिर वो बांध देती है भैया उस पर ब्रह्म को। लिखा ये तुझे पता नहीं क्या तुमने ये लिखा? वो पर ब्रह्म गोपियों के चरणों को पलटता है तुम्हें ये लिखा। कभी वो क्षमा मांगता हम लोगों से नारे हम निर्वर्त नहीं, ये लिखा। गोपिया मैं तुम्हारा जीवन करता रही हूँ, कोटि कोटि वर्षों की आयु होने पर भी तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार तुम लोगों ने अपने आद्य धर्म को, पति को, अपने परिवार को, धन संपत्ति को, सबको तुमने तीर्ण समझ करके अपने गुरुजनों के आदेश को सबको उल्लंघन करके और हमारे लिए सब कुछ किया है, इस ऋण से मैं अपने पता नहीं अपने कृपा से ही तुम हमारे उनको अपने ऋण से मुक्त कर सकते। ये लिखा गोपी गीत, वेणु गीत, ब्रह्म गीत, उद्धव संदेश, ये सब जानते हो न? तो ये तो सब कुछ नहीं, वो तो सब कुछ नहीं। अब तुम इसी का अपने ग्रंथ में निर्णय करके और लिखो। कहिए ये तो मैं जानता हूँ कैसे लिखूं, अर्थात तो ठीक है आपकी योगदान आप है करो, इसके द्वारा तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। भक्ति योगे न मनुषा सम्यक पंडिते हमारे अपस्कृत को संपूर्ण माया जज्जत अभाग से भक्ति योग को उन्होंने ग्रहण किया। भक्ति जो हमारे अनकंडीशनल सरेंडर, मैं कुछ नहीं जानता है प्रभु, ये सब चीजें हमारे हृदय में प्रकट हो, इसका नाम है आत्मसमर्पण। पहले आत्मसमर्पण पुत्र के चरणों में होगा, उन्होंने नारद जी के चरणों में भी और नारद जी ने यह सब बतलाया कृपा करके, तो उन्होंने चित्त को एकाग्र किया। कैसे? भक्ति योग के द्वारा समस्त संसार के विषयों से धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सारी चिंताओं से, नारायण की चिंता से यहाँ तक की और गोरों की भी चिंता से ऊपर राधा कृष्ण के चित्त में अपना लगाया, क्योंकि राधा जी का हृदय का भाव ही भक्ति का होता है। भक्ति योगे न मनसि क्षमन पंडिते अमलम पुरुष अवश्य देखा उन्होंने आंवले के हाथ में जैसे आंवला हाथ में रख दिया है दिखाई पड़ता है। वैसे कृष्ण की ये सब लीलाएं दिख पड़ी जैसे सिनेमा होता है, वैसे कृष्ण के बाल्यकाल से लेकर और द्वारका लीला और उसके पश्चात ब्रज में आना, ब्रज की लीला को बैकुंठ में ले जाना, गोपी गोपियों के साथ में द्वारका की लीला को भी जब अंकित कर दिया, यहाँ तकी सारी लीलाओं को उन्होंने सब साथ देखा। जैसे आप सूर्य नारायण पर परम पुरुष काफी उसको बन जाता है उनका दो मोह देखा अपश्य पुरुष कृष्ण की जन्म से रासलीला और प्रचित में रहना तक मथुरा गमन, मथुरा से द्वारका गमन, ये सारी लीलाओं को उन्होंने सब साथ कर और जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने ये भी लिखा जी कैसे भगवान को दूर करके यहाँ बढ़ाया है दुखी है और किस प्रकार से सदगुरु का पदाश्रय करके भजन करके फिर कृष्ण को प्राप्त हुआ, इसको भी देखा और देख करके और तब उन्होंने लिखा जैसे सूर्य महाराज कृष्ण परम पुरुष जिसको भक्ति का आश्रय करने से परम पुरुष जो कृष्ण है परम पुरुष कौन है? अपने परिकरों के साथ लीला परिकरों के साथ लोग गोपियों माता के गुरुदाय उनके साथ में देख करके आप उनकी लीलाओं को देखा, अपनी लीलाओं को लिपिबद्ध करके उन्होंने अक्षरात्मक रूप में या जिन्हें वही अक्षर को भी इंटेंशन किया और उसके द्वारा पूरे रूप फिर कैसे अपने बेटे को सुनाया पढ़ाया वो भी लिखा। ये सारी बातें परीक्षित को जो सुनाई गई है वो पूरे श्रीमद भागवत का प्रकाश किया जो आज तक प्रकाश उसमें कृष्ण की समस्त लीलाओं का वर्णन सब कुछ उसमें तत्व जितने हैं सब कुछ उसमें वर्णित है। उस भक्ति का आश्रय यदि किया जाए हमारे जीवन
I don't think it's so bad for me.